समाचार सेवा प्रभाग प्रस्तुत करता है कार्यक्रम आज सवेरे।
नमस्कार, आज सवेरे के आज के संस्करण में आप सबका बहुत बहुत स्वागत। देश दुनिया की तमाम खबरों का लेखा जोखा लेकर सरबजीत कौर के साथ आज मैं हूं नवीन सक्सेना। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि आज देश लोकसभा चुनाव के छठे चरण का उत्सव मना रहा है। 6 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में मतदान लगभग शुरू हो चुका है, आधा घंटा बीत चुका है। तो मेरी और सरबजीत की आपसे यही उम्मीद रहेगी कि आप मतदान करने आज जरूर जाएंगे। और सरबजीत, मतदान कहना शायद उतना उचित नहीं होगा अगर हम इसे कहें मताधिकार। आप अपने मताधिकार का प्रयोग कीजिएगा, जरूर जाइएगा। हल्की गर्मी है, अभी जाएंगे बेहतर रहेगा, नहीं तो पूरा दिन है आपके पास। क्यों सरबजीत?
एब्सोल्युटली नवीन, इट्स अनदर डे वेयर वी टॉक अबाउट सेलिब्रेशन ऑफ डेमोक्रेसी एंड व्हाइल वी टेक दिस डिस्कशन ऑफ यू नो द राइट एंड आवर ड्यूटी टू वोट, लेट्स ऑल्सो बिगिन द डेली न्यूज मैगजीन प्रोग्राम आज सवेरे, वेयर इन द नेक्स्ट हाफ एन आवर वी शैल ब्रिंग टू आवर लिसनर्स द लेटेस्ट इन नेशनल एंड इंटरनेशनल न्यूज, मेट्रो सिटी अपडेट्स एंड ऑफकोर्स हिस्टोरिकल information to let our listeners know what makes 25th of May so important.
सरजी, जब इतिहास के पन्नों में हम झांकेंगे ना तो हम बहुत सी शख्सियतों के बारे में बात करेंगे जो कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में आज से जुड़ी हुई हैं। लेकिन एक शख्सियत ऐसी है जो कुछ इस तरह से दिल में समाई हुई है और उसने कुछ यूं कहा है।
ना मुंह छुपा के जियो और न सर झुका के जियो, गमों का दौर भी आए तो मुस्कुरा के जियो, ना मुंह छुपा के जियो और न सर झुका के जियो।
तो अगले आधे घंटे तक आप सोचिए कि ये कौन सी ऐसी पर्सनालिटी है, कौन सा ऐसा व्यक्तित्व है जिसकी आज हम चर्चा करेंगे, जिसे इतनी बड़ी बात कही। बहरहाल नजर डाल लेते हैं अब तक की खास खबरों पर। लोकसभा चुनाव के छठे चरण में 6 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों के 58 संसदीय क्षेत्रों में मतदान शुरू हो चुका है। इस चरण में उत्तर प्रदेश की 14, हरियाणा की सभी 10, बिहार और पश्चिम बंगाल की 8-8, दिल्ली की सभी 7, ओडिशा की 6, झारखंड की 4 और जम्मू कश्मीर की 1 सीट के लिए मतदान हो रहा है। ओडिशा विधानसभा के 42 निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान हो रहा है, वोट शाम 6 बजे तक डाले जाएंगे। मतदान के लिए 11,40,000 चुनावकर्मी 1,14,000 मतदान केन्द्रों पर तैनात किए गए हैं। 11,13,00,000 से अधिक मतदाता आज अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे।
एंड नवीन, हाई पिच कैंपेनिंग कंटिन्यूज फॉर 7th एंड फाइनल फेज ऑफ लोकसभा इलेक्शंस। टॉप पॉलिटिकल लीडर्स आर होल्डिंग मैराथन रैलीज इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री टू गार्नर सपोर्ट इन देयर पार्टीज फेवर। पोलिंग इन दिस फेज विल बी हेल्ड फॉर 57 पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूएंसीज अक्रॉस 7 स्टेट्स एंड अ यूनियन टेरिटरी ऑन द 1st ऑफ जून। अ टोटल ऑफ 904 कैंडिडेट्स आर इन द फ्रे इन दिस फेज। Prime Minister and senior BJP leader Narendra Modi will be on a day-long visit to Bihar today. Mr. Modi will address 3 public meetings in Patna, Rohtas and Buxar districts. Mr. Modi will also hold rally in Ghazipur constituency in Uttar Pradesh. Chief Minister and BJP leader Yogi Adityanath will campaign in Selampur, Balia, Chandauli and Varanasi constituencies today. On the other hand, wife of Samajwadi Party Chief Akhilesh Yadav, Dimple and Congress leader Priyanka Gandhi Vadra will hold a road show in Varanasi. The counting of votes for all the phases will take place on the 4th of June.
सरबजीत, तो चुनाव के दौरान लोग तरह तरह के अफवाहें फैलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन हरियाणा ने किसी भी असामाजिक तत्व को लेकर हरियाणा पुलिस ने एक हाई अलर्ट जारी किया है। अगर कोई भी अफवाह फैलाएगा तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। हरियाणा के पुलिस महानिदेशक शत्रुजीत कपूर ने कहा है कि अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी और पुलिस की जो टीमें हैं वो विभिन्न स्तरों पर सोशल मीडिया पर निगरानी रख रही हैं।
National Investigation Agency, NIA, has arrested one more accused in connection with Rameshwaram cafe blast case. According to the NIA, 35-year-old Shoaib Ahmed Mirza, a resident of Hubli City, Karnataka, is the fifth accused who has been arrested in the case. The accused, identified as an ex-convict in a Lashkar-e-Taiba terror conspiracy case. NIA investigations reveal that Mirza, who was convicted earlier in Lashkar-e-Taiba Bengaluru conspiracy case, had got involved in this fresh conspiracy after being released from jail. In 2018, he had befriended and introduced accused Abdul Mateen Taha to an online handler. Mirza had further provided an email ID for encrypted communication between the handler and Abdul Mateen, who was arrested earlier in April this year from his hideout in Kolkata.
नजर डाल लेते हैं अगली अंतर्राष्ट्रीय खबर पर. द हेग स्थित अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय आईसीजी ने इसराइल को गाजा पट्टी के सबसे दक्षिणी शहर रफाह में अपनी विवादास्पद सैन्य कार्रवाई को तुरंत रोकने का आदेश दिया है. हालांकि इस बीच इसराइल ने अदालत के फैसले को खारिज कर दिया है और संकेत दिया है कि वो अपनी कार्रवाई को रोकने के किसी भी आदेश की अनदेखी करेगा. इसराइल ने कहा कि गाजा में उसका सैन्य आक्रमण अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुरूप था.
Sunflowers were the first ones to know. A film by Film and Television Institute of India, FTII student Chidanand S. Nayak and his team has won La Cinef Award at 77th Cannes Film Festival. The winner was officially announced at the festival. The film has been directed by Chidanand S. Nayak, shot by Suraj Thakur, edited by Manoj V and sound by Abhishek Kadam. Ministry of Information and Broadcasting said this is a historic moment for the Indian cinema. Indian films have been receiving accolades at international stage. FTII has performed remarkably well at Cannes, with its students' films being screened at the festival in past few years.
और अब बात करते हैं खेलों की दुनिया की. तो सबसे पहले क्रिकेट. आईपीएल क्रिकेट के दूसरे क्वालिफायर में कल सनराइजर्स हैदराबाद ने राजस्थान रॉयल्स को 36 रन से हरा दिया. 176 रन के लक्ष्य के जवाब में राजस्थान की टीम सिर्फ 139 रन ही बना सकी. कल फाइनल में कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद से होगा.
In badminton, two-time Olympic medalist PV Sindhu will take on world number 20 Busanen Ongbung of Thailand in the women's singles semi-finals of Malaysia Masters in Kuala Lumpur today. The ace shuttler defeated top seed Han Yu of China in the quarter-final yesterday. However, Ashmita Chalea lost to Chinese Zhang Yimen in the other women's singles quarter-final.
आज सवेरे में अब वक्त हो चला है प्रमुख महानगरों से जुड़ी खबरों का. तो चेन्नई, बेंगलुरु और हैदराबाद की खबरों के साथ है सरबजीत, और फिर मैं दिल्ली, मुंबई और कोलकाता के हाल बताऊंगा.
Naveen, we have a handful of information from Chennai today. The National Green Tribunal directed the Kerala government to halt the construction of a check dam across the river Silanid if it has not obtained the mandatory approvals. The NGT Southern Zone in Chennai took suo motu cognizance of the reports that appeared in the section of media as the construction of a dam on an interstate river could impact the irrigation in Tamil Nadu districts. The tribunal has asked Kerala's Water Resources and Forest Departments to ensure that all the required approvals for the construction of the check dam are in place and to withhold the project if there are no proper approvals. The case will be heard again on 23rd of July. Tamil Nadu State Board schools will reopen on 6th June after summer vacation. The School Education Department directed all CEOs to make arrangements for the reopening of the schools. Trains running between Visakhapatnam and Chennai will get Link Hoffman Bush coaches. The Superfast Express will get them this week. The trains will have 1AC, 1AC 2-tier, 3AC 3-tier coaches, 9 sleeper class coaches, 4 general second class coaches, 1 second class coach and 1 luggage cum brake van. Bengaluru Airport City Limited, BACL, a wholly owned subsidiary of Bangalore International Airport Limited, has unveiled its investment plan for a 2 million square foot business park and a 775-room hotel near Kempegowda International Airport. The biophilic-inspired business park will offer smart workplaces within a vibrant public realm, with the urban forest as its most exceptional feature. This lush oasis in the center of the development will seamlessly blend indoor and outdoor spaces. The upcoming metro station in Airport City will provide seamless connectivity to the business park from the northern side, ensuring convenient accessibility. The business park will be accompanied by a combo hotel and a concert arena. The vegetable market in Bengaluru city is witnessing a sharp surge in prices. Vegetable vendors attribute this to low yield and recent downpours causing rapid spoilage. The escalating vegetable prices are becoming a significant burden on customers' wallets. Retail prices for vegetables from carrots to capsicums have soared above Rs 80, with some touching Rs 100 and above. Wholesale prices have increased from an average of Rs 30 to Rs 60. The Election Commission of India has accorded permission to the Telangana government for organizing State Formation Day celebrations on June 2nd. State Chief Secretary Santhi Kumari directed the officials to make elaborate arrangements in a befitting manner for decadal celebrations of Formation Day. She reviewed the arrangements to be made for the celebrations at Parade Ground, Secunderabad. Chief Minister A. Revanth Reddy will visit Gun Park first and pay tributes to the martyrs and then proceed to the parade grounds for the main ceremony. Naveen, what's the information that you're going to share with our listeners today?
सबसे पहले बात दिल्ली की कर लेते हैं. दिल्ली में आज छठे चरण के चुनाव हो रखे हैं. मुख्य चुनाव अधिकारी पी कृष्णमूर्ति ने आज छठे चरण के मतदान में सभी मतदाताओं से बड़ी संख्या में मतदान करने का आग्रह किया है और यह पहली बार हो रहा है जब दिल्ली के चुनावों में जरूरी चिकित्सकीय किट के साथ साथ पैरामेडिकल कर्मचारी भी सभी मतदान केंद्रों पर तैनात रहेंगे. और सरबजीत, इसके अलावा सांकेतिक भाषा के विशेषज्ञ भी वहां पर रहेंगे जो दिव्यांग मतदाताओं को निर्बाध मतदान करवाने के लिए मतदान केंद्रों में उनकी सहायता करेंगे. चुनाव अधिकारी पी कृष्णमूर्ति ने कल दिल्ली के गोल मार्केट स्थित एक ईवीएम वितरण केंद्र का भी दौरा किया जहां मतदान कर्मियों को ईवीएम और वीवीपैट वितरित किए गए. दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों पर पहली बार 2,52,000 से ज्यादा युवा मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे. दिल्ली में 1,52,00,000 से अधिक मतदाता हैं जिसमें 42,00,000 पुरुष और 70,00,000 के करीब महिला मतदाता हैं. लोकसभा चुनाव के छठे चरण के तहत आज दिल्ली, फरीदाबाद और गुड़गांव में मतदान प्रक्रिया के मद्देनजर शराब की दुकानें शाम 6 बजे तक बंद रहेंगी. अगले महीने की 4 तारीख को होने वाली मतगणना के दौरान भी इन क्षेत्रों में शराब की दुकानें बंद रहेंगी. रक्तचाप एक ऐसी बीमारी है जो काफी लोगों को पीड़ित करती है और बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिन्हें इसके बारे में पता ही नहीं चलता क्योंकि इसके बहुत से लक्षण होते हैं जो आते ही नहीं हैं. हालांकि दिल्ली के एम्स ने रक्तचाप के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए कल अपने परिसर में एक सार्वजनिक व्याख्यान का आयोजन किया. देश में लगभग 22 करोड़ वयस्कों को उच्च रक्तचाप यानी बीपी की बीमारी है. लोग जागरूकता की कमी के कारण इसके निदान, उपचार और नियंत्रण की स्थिति पर ध्यान नहीं दे पाते हैं. बात करते हैं उत्तर रेलवे की. उत्तर रेलवे ने बताया है कि सर्वर अपडेट के कारण आज और कल दिल्ली स्थित यात्री आरक्षण सिस्टम यानी पीआरएस की सेवाएं अस्थायी रूप से ठप रहेंगे और इस दौरान यात्री आरक्षण, निरस्त्रीकरण, पूछताछ सेवा और इंटरनेट बुकिंग जैसी सुविधाएं उनके लिए उपलब्ध नहीं होगी. अब रुख करते हैं मुंबई का. महाराष्ट्र के ठाणे में डोंबिवली में हुए बॉयलर ब्लास्ट मामले में ठाणे पुलिस ने अमुदन केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड के 2 मालिकों को हिरासत में ले लिया है. इस घटना में 11 लोगों की मौत हो गई है और 60 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं. महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने मृतकों के परिवारों को 5,50,000 रुपए की आर्थिक मदद देने का ऐलान किया है. वहीं मॉनसून के मौसम आने के साथ ही मध्य रेलवे का मुंबई डिवीजन अपने व्यापक नेटवर्क में निर्बाध परिचालन और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अब कोई कसर नहीं छोड़ेगा. रेलवे 161 पंप उपलब्ध कराएगा और ग्रेटर मुंबई नगर निगम शेष 31 पंप उपलब्ध कराएगा. मध्य रेलवे माइक्रो टनलिंग, ड्रेन डिस्टिलिंग, पेड़ों की छटाई, मलबा हटाने जैसी इन गतिविधियों पर भी ध्यान केंद्रित कर रहा है. और जैसा कि हम जानते हैं कि मुंबई में बहुत बहुत बारिश होती है और लगभग 2 या 3 दिन तक वहां पे बिल्कुल यातायात ठप हो जाता है, लेकिन इस बार मध्य रेलवे ने कोशिश की है कि ऐसा कुछ न हो. बहरहाल सरबजीत, अब कोलकाता का रुख करते हैं. कोलकाता में आज बांग्ला भाषी लोग संपूर्ण बंगाल में कवि और साहित्यकार काजी नसरुल इस्लाम की 125वीं जयंती बना रखी है और इतिहास में आज हम भी इन पर चर्चा करेंगे और आपको बताएंगे कि क्यों खास हैं काजी नसरुल इस्लाम। काजी नसरुल बांग्लादेश के राष्ट्रीय कवि भी हैं। नसरुल ने कई गीत रचे जिन्होंने बंगाल के क्रांतिकारियों को ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ उठने के लिए प्रेरित किया। पश्चिम बंगाल सरकार के सूचना और संस्कृति विभाग ने आज कोलकाता में इस महान कवि को याद करने के लिए एक कार्यक्रम आयोजित किया है। पूरे पश्चिम बंगाल में विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से काजी नसरुल को आज याद किया जाएगा। तो ये थी दिल्ली, मुंबई और कोलकाता की खबरें। और अब हाल मौसम, दिल्ली का मौसम बताने की जरूरत है दोस्तों। दिल्ली में लू चलने और रात गर्म होने का अनुमान है। अधिकतम तापमान 44 डिग्री आज रह सकता है, न्यूनतम तापमान 31 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। मुंबई की बात करें तो आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे, तापमान 27 डिग्री और अधिकतम 34 डिग्री रहेगा। कोलकाता में भी आमतौर पर बादल छाए रहेंगे, हल्के बौछारें भी पड़ सकती हैं, न्यूनतम तापमान 26 डिग्री रिकॉर्ड किया गया, अधिकतम तापमान 35 डिग्री रह सकता है।
Chennai is expected to have partly cloudy sky. The minimum temperature was 29 degrees Celsius. Maximum will be around 39 degrees. Bengaluru is expected to have partly cloudy sky with one or two spells of rain or thunder showers. The minimum temperature was 23 degrees Celsius. Maximum will be around 31 degrees. Hyderabad is expected to have generally cloudy sky with possibility of rain or thunderstorm or dust storm. The temperatures will hover between a minimum of 25 degrees and a maximum of 38 degrees Celsius. And listeners, today is a momentous occasion. Yes, it's the World Football Day. This year marks the 100th anniversary of the first ever international football tournament that united teams from all corners of the globe. It all began on May 25th in the year 1924 during the Summer Olympics in Paris, setting the stage for a century of football history. Just a few weeks ago, on May 7th, 2024, the General Assembly made it official by proclaiming May 25th as World Football Day. This day celebrates the incredible power of football to bring people together. As the legendary Pele once said, football is the only sport where you put people together. It doesn't matter if you are rich, poor, black or white. It is one nation. This is the beauty of football.
Okay, this is the beauty of football. और सरबजीत जानते हैं कि फुटबॉल ही एक ऐसा खेल है जो कम से कम पैसों में ज्यादा से ज्यादा लोग खेल सकते हैं। और जैसा कि हमने बताया कि आज वर्ल्ड फुटबॉल डे है और फुटबॉल इज सपोज टू बी द बिगेस्ट खेल, सबसे ज्यादा लोग इसको पूरे विश्व में खेलते हैं, सबसे ज्यादा प्रशंसक यहां पर हैं। हमारे देश की बात करें तो पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा फुटबॉल खेला जाता है, लेकिन जब भी वर्ल्ड कप होता है तो पूरा देश मिलकर फुटबॉल देखता है ना?
So indeed, time to pull out your football and those kicks.
Yes.
And enjoy this day of World Football Day.
लेकिन आज दिन में मत खेलिएगा, बहुत गर्मी होगी, शाम को 5-6 बजे फुटबॉल निकालिए और फिर खेलिए, कितना मजा आता है ना?
And that's also after you have cast your vote. Moving on further, today we are also observing Africa Day, an annual tribute to African independence, sovereign rule and identity. Africa Day, also known as African Liberation Day, commemorates the founding of the Organization of African Unity on May 25th in the year 1963. Today, Africa Day holds immense significance as a reminder of the importance of unity among African nations in achieving common goals and addressing shared challenges. This year's theme, Education Fit for the 21st Century, calls for global leadership to create an education system that meets the demands of the modern world. It's a call to action to ensure that every African child has the opportunity to thrive in a rapidly changing world.
हर दिन अपने आप में खास होता है क्योंकि हर दिन का अपना इतिहास होता है। दो दिन तो हमने आपको बता ही दिए कि आज अफ्रीका डे है और आज वर्ल्ड फुटबॉल डे है, लेकिन इसके अलावा आज का दिन क्यों खास है? क्योंकि आज ही के दिन 1995 में वो दिन था जब वैज्ञानिकों ने पहली बार जीवित जीव के डीएनए को डिकोड करने में सफलता हासिल की थी। उन्होंने जीवाणु हिमोफिलस इन्फ्लुएंजा का पहला पूरा जीनोम प्रकाशित किया था और इस जीनोम में 18,30,132 बेस थे।
सो आई ऑल्सो हैव अ पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट व्हिच हैपेंड ऑन दिस डे इन द ईयर 1999। इंडिया ब्लास्टेड इट्स वे इनटू द ग्लोबल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल मार्केट विद द पीएसएलवी C2 डिप्लॉइंग टू फॉरेन सैटेलाइट्स बिसाइड्स द इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट IRSP-4।
इतिहास में जब बात अंतरिक्ष की हो रही है तो कुछ मैं भी जोड़ूंगा। 2008 में आज ही के दिन अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा द्वारा भेजा गया रोबोट मंगल ग्रह पर उतरा था और इस रोबोट का नाम फिनिक्स था, जो कि एक मानव रहित मिशन था।
नवीन, ऑन दिस डे इन द ईयर 1996 कथा पुरुषन इंडो जापानीज मलयालम लैंग्वेज पीरियड ड्रामा फिल्म वन द बेस्ट फिल्म नेशनल अवार्ड।
वो आज का दिन था जब 2013 में 80 वर्ष के एक जापानी पर्वतारोही ने सबसे अधिक उम्र में दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत शिखर एवरेस्ट पर चढ़ाई करने का रिकॉर्ड अपने नाम किया था।
1995 25 में द पार्लियामेंट गेव असेंट टू द बजट एंड पास द फाइनेंस अप्रोप्रिएशन बिल।
ओपरा विनफ्रे शो, इसको कौन नहीं जानता। 2011 वो आज ही का दिन था जब द ओपेरा विनफ्रे शो की अंतिम कड़ी का प्रसारण किया गया था। सबसे लंबे समय तक प्रसारित हुए इस टेलीविजन कार्यक्रम ने ओपेरा को अमेरिका की सबसे रईस और प्रभावी शख्सियत बना दिया था।
लिसनर्स, ऑन दिस डे इन द ईयर 1611 एम्परर जहांगीर मैरिड मेहरुन्निसा विडो ऑफ शेर अफगान। शी रिसीव द टाइटल नूरजहां एंड इन द ईयर 1915 ऑन दिस डे महात्मा गांधी एस्टैब्लिश्ड द साबरमती आश्रम नियर अहमदाबाद।
और अब बात करते हैं उन व्यक्तियों की जो जुड़े हुए हैं आज के दिन से। सबसे पहले बात जयंती की। आज प्रख्यात वकील और शिक्षाविद रास बिहारी बोस की जयंती है। आज के दिन 1886 में उनका जन्म हुआ था। वो प्रख्यात क्रांतिकारी थे जिन्होंने सबसे पहले आजाद हिंद फौज के गठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। रास बिहारी बोस उन लोगों में से थे जो देश के बाहर जाकर विदेशी राष्ट्रों की सहायता से अंग्रेजों के विरुद्ध उन्होंने वातावरण तैयार कर भारत की मुक्ति का रास्ता निकालने की बात सोचते थे। 1937 में उन्होंने भारतीय स्वायत्त संघ की स्थापना की जो भारतीयों का आह्वान करती थी ताकि भारत को स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया जा सके।
लिसनर्स, टुडे इज द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ रेमंड क्लेवी कार्वर, एन अमेरिकन शॉर्ट स्टोरी राइटर एंड पोएट। ही पब्लिश्ड हिज फर्स्ट कलेक्शन ऑफ स्टोरीज विल यू प्लीज बी क्वाइट इन 1976। हिज ब्रेकआउट कलेक्शन व्हाट वी टॉक अबाउट व्हेन वी टॉक अबाउट लव रिसीव्ड इमीडिएट अक्लेम एंड एस्टैब्लिश्ड कार्वर एज एन इम्पोर्टेंट फिगर इन द लिटरेरी वर्ल्ड। इट वॉज फॉलोड बाई कैथीड्रल विच कार्वर कंसिडर्ड हिज वॉटरशेड एंड इज वाइडली रिगार्डेड एज हिज मास्टर पीस।
आज मशहूर शायर दाग दहलवी की भी जयंती है। दाग दहलवी का अधिकांश समय दिल्ली में व्यतीत हुआ था। 1831 में उनका जन्म हुआ था। उनकी शायरी में दिल्ली की तहजीब नजर आती है। दाग दहलवी उर्दू के बड़े और मकबूल नामों में से एक हैं। उनकी लिखी शायरी अपने आप में एक अलग पहचान रखती है और बहुत ही आला शायर थे और लाल किले में 12 वर्ष रहते हुए दहलवी ने अपनी शायरी से उस युग के बुजुर्ग शायरों जैसे गालिब, मोमिन, जौक, शेफ्ता को नहीं चौंकाया बल्कि अपनी सीधी सहज भाषा में और उसके नाटकीय आकर्षण से भी लोगों ने उनका प्रशंसक जो बन गए थे। दाग दहलवी कहते हैं कि आप पछताएं नहीं, जोर से तौबा न करें, आपके सर की कसम दाग का हाल अच्छा है। वहीं कहते हैं कि कल तक जो आशना थे मगर आज गैर हो, दो दिन में ये मिजाज है, आगे की खैर हो।
एंड नवीन, एज यू मेंशन्ड इन द बिगिनिंग ऑफ द प्रोग्राम टुडे दैट टुडे इज द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ काजी नजरुल इस्लाम, बंगाली पोएट, राइटर, जर्नलिस्ट एंड म्यूजिशियन। In fact, he is the national poet of Bangladesh. Nazrul produced a large body of poetry, music, messages, novels, stories with themes that included equality, justice, anti-imperialism, humanity, rebellion against oppression, and religious devotion. Nazrul Islam's writings explored themes such as freedom, humanity, love, and revolution. He opposed all forms of bigotry and fundamentalism, including religious, caste-based and gender-based. Nazrul wrote short stories, novels and essays, but is best known for his songs and poems. Qazi Nazrul Islam introduced the ghazal songs in the Bengali language and is also known for his extensive use of Arabic and Persian-influenced Bengali words in his works.
आज मशहूर अभिनेता सुनील दत्त की पुण्यतिथि है. आज ही के दिन 2005 में उनका निधन हुआ था. 60 के दशक के दिग्गज एक्टर सुनील दत्त ने एक से बढ़कर एक बॉलीवुड फिल्मों में काम करके अपने अभिनय से अपने चाहने वालों की एक लंबी कतार खड़ी कर दी थी. एक बहुत लंबी जर्नी है सुनील दत्त की, जिसमें वो एक्टर भी रहे, जिसमें वो कंडक्टर भी रहे, जिसमें वो अनाउंसर भी रहे, उसके बाद नेता भी बने और उसके बाद वो एक सामाजिक कार्यकर्ता भी थे. सुनील दत्त ने बस कंडक्टर की नौकरी की थी और इसके बाद अपना ग्रेजुएशन पूरा करने के लिए रेडियो सेलोन में हिंदी के सबसे पसंदीदा अनाउंसर के पद पर उन्होंने अपना काम करना शुरू कर दिया था. हालांकि इस नौकरी ने उनके एक्टिंग करियर को एक नया मोड़ दिया और सुनील दत्त ने साल 1955 में रेलवे प्लेटफॉर्म नाम की पहली फिल्म में अपना एक्टिंग डेब्यू किया. सुनील दत्त साहब की फिल्मों की बात करें, मदर इंडिया, हमराज, नागिन, पड़ोसन, शान, वक्त बहुत सुपरहिट फिल्में हैं. भले ही सुनील दत्त आज दुनिया में नहीं है, लेकिन उनका शानदार अभिनय आज भी अपने फैंस के दिलों में तरोताजा है. मुंबई मुन्ना भाई एमबीबीएस को हम कभी नहीं भूल सकते हैं. खूबसूरत सा एक डायलॉग है, पहले वो सुनते हैं.
10 साल तक तू झूठ बोलता रहा, उस वक्त तेरी आंख में शर्म नहीं आई, और आज जब तेरे बाप को तुझ पे नाज है, तू सर झुकाए खड़ा है. मुझे तो यकीन नहीं आता कि लोग मेरे बेटे को इतना प्यार करते हैं.
लेकिन बाबूजी, मैं डॉक्टर नहीं बन पाया.
अरे पगले, डॉक्टर तो सिर्फ जान बचाते हैं, तूने तो लोगों को जीना सिखा दिया. तू हमेशा माँ को जफ्फी देता रहा, आज बाप की हसरत भी पूरी कर दे.
जबरदस्त एक्टिंग की थी इस फिल्म में सुनील दत्त ने, और अपनी फिल्मों में डाकू का भी उन्होंने किरदार निभाया. सामाजिक मुद्दों पे काम करने वाले सुनील दत्त की आज हमने जैसे बताया यह पुण्यतिथि है. जन्म हुआ था उनका 6 जून 1929 को झेलम पाकिस्तान में. असली नाम बलराज दत्त था. खूबसूरत सा गीत है उन पर फिल्म आया हुआ, वो भी सुनते हैं.
नीले गगन के तले धरती का प्यार पले, ऐसे ही जग में आती है सुबह, ऐसे ही शाम ढले. नीले गगन के तले धरती का प्यार पले.
Listeners, today is the birthday of Karan Johar, filmmaker, television personality, the recipient of several accolades including 2 National Film Awards, 7 Filmfare Awards and the Padma Shri.
Mujhko kya hua hai, kyun main kho gaya hoon, pagal tha main pehle, ya ab ho gaya hoon.
आज हिंदी सिने जगत में लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के नाम से मशहूर जोड़ी के लक्ष्मीकांत की भी पुण्यतिथि है. उनका असली नाम लक्ष्मीकांत शांताराम कुदलकर था. अपने फिल्मी करियर की शुरुआत उन्होंने कल्याण जी आनंद जी के सहायक के रूप में फिल्म मदारी से की. उन्होंने मदारी, सट्टा बाजार, छलिया और बहुत सारी फिल्मों में काम किया. फिल्म पारसमणि का ये सॉन्ग है, गीत है, जिसमें उन्होंने पहली बार संगीत दिया था, सुनते हैं.
ढूंढ दिल ना ढूंढा जा.
आज सवेरे के आज के संस्करण में बस इतना ही। चलते चलते मैं और सरबजीत आपको एक खूबसूरत विचार के साथ छोड़े जा रहे हैं। रॉबर्ट फॉस्ट ने कहा था, जीवन विकल्पों से भरा है और हमें तुरंत निर्णय लेना चाहिए।
Yes, listeners, leaving you with this lovely thought. Stay tuned for Samachar Prabhat, our Hindi news bulletin, and followed by Morning News in English at 8:15 a.m. Thank you for tuning in. Have a superb day.
Namaskar.